ओम शांति। बत्ती वालों को आनंद आ रहा है? बहुत। कितना अच्छा सुख मिलता है यहाँ आकर। यहाँ आकर नई राहें खुलती हैं। साकार में जब बाबा थे तो मधुबन को एक नाम दिया जाता था जो आजकल नहीं दिया जाता, वो था शीश महल। शीश महल इसलिए कि यहाँ आकर सभी को अपना पता चलता है, मैं कहाँ हूँ, मेरे में क्या कमजोरियाँ हैं। उन दिनों कमजोरियों की बात होती थी और अब बात दूसरी भी है। हमें ये भी पता चलना है, चलना चाहिए, हम महान कितने हैं। केवल कमजोरी नहीं, वो तो 84 जन्म पूरे करके यहाँ पहुँच गए तो कमजोरी तो होंगी ही। उनका हमें पता हो कि मुझे अपनी ये कमजोरियाँ ठीक करनी है, लेकिन ठीक होंगी जब हमें अपनी महानताओं का पता होगा। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे थोड़े समय में तेज पुरुषार्थ करना है। करना है, चाहते हैं, पीछे वाले चाहते हैं तेज पुरुषार्थ, लेकिन हमारी इच्छा दृढ़ है या यहां आके ही सोचते हैं? अपने को देखेंगे सभी, सचमुच हम तेज पुरुषार्थ करना चाहते हैं? यहां के तो उमंग बढ़ती है, लोग वो भी आते हैं जो नॉन बीके हैं, जो ज्ञान में नहीं है, सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, कहते हैं घर जाके भी उठा करेंगे, बड़ा मजा आता है, लेकिन अगले दिन 6 बजे फिर 8 बजे। यहाँ का तो प्रभाव ही अलग है और ये भूमि संसार की सर्वश्रेष्ठ भूमि जो महान तीर्थ बनने वाला है। तो पहले अपने से पूछें, हम तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं और उसके लिए चिंतन करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे अभी। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, आया है, मुझे उससे क्या क्या लेना है? ये चिंतन बहुत गुह्य है। अपने से बातें करना इस समय, ये समय वो समय है जब हम अपने 84 जन्मों का भाग्य निर्माण कर रहे हैं। मुझे क्या क्या लेना है थोड़े बताता हूं, विस्तार आप करना। मुझे बाबा से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि लेनी है ताकि हर जन्म में बुद्धिमान रहूं, यही मिलेगी वो। जिनको डल बुद्धि है उन्होंने यहां गड़बड़ की है, पाया नहीं है बुद्धि। मुझे सदा धनवान बनने का वरदान ले लेना है, वो मिलेगा ज्ञान खजाने से। मुझे अपना भाग्य इतना महान बना लेना है कि किसी भी जन्म में भाग्य की कमी न दिखाई दे। पसंद है? 3 बड़ी प्राप्तियां मैंने कही। अब दूसरी जो बहुत जरूरी है, मुझे हर जन्म में रोज, 5000 साल में कितने रोज होंगे सोच लो, सफलता प्राप्त हो, ये सफलता का वरदान यहां ले लेना है। ये बहुत सुंदर चीज है, बड़ी चीज भी है और पुरुषार्थियों के लिए छोटी भी है, जल्दी मिल जाएगा। बाबा ने कहा जो अपने सर्व खजानों को सफल करेंगे सफलता का वरदान पाएंगे। श्वास, संकल्प, समय, मुख्य चीज ये होती है, बाकी तो आप इनके पीछे आ जाती हैं। हर जन्म में मुझे एक बहुत श्रेष्ठ परिवार मिले, इच्छा होती है या नहीं? मैं तो कई माताओं को देखता हूं, पति लड़ाकू मिल गया, कहती है ऐसा पति 84 जन्म में कभी नहीं चाहिए बाबा। मैं कहता हूं रिपीट होगा अब तो ड्रामा, बस बदल दे ड्रामा को। हर व्यक्ति चाहता है ना परिवार सुखदाई हो, प्यार से भरपूर हो, एक दूसरे के गुड फ्रेंड हो परिवार में। चाहती है माता या नहीं ऐसा ही? या बच्चे आए और आपस में ही लड़ रहे हैं, मां के लिए भी समस्या? ऐसा कोई नहीं चाहता। वो सब वरदान यहां मिलते हैं। जितना इस अलौकिक परिवार में प्यार से रहेंगे, जन्म जन्म परिवारों में प्यार मिलेगा। जितना प्रभु प्रेम में मगन रहेंगे, हर जन्म हर जब परिवार हमारे होंगे प्यार प्राप्त होगा। और एक सुंदर बात मुझे याद आ गई, मजेदार है। अव्यक्त बाबा ने कहा जो अपने साथियों को प्यार नहीं करते यहां, द्वापर युग से जब उनके मंदिर बनेंगे, उनके मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं होगा दिया जलाने वाला। ऐसे बहुत मंदिर आपने देखे होंगे, हमने भी देखे। एक जगह हनुमान जी का मंदिर दिखाने हमें ले गए, ले इसलिए गए थे कि वहां ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि वहां जाने से रोग ठीक हो जाते हैं। हमने भी देखा है वहां। उससे पहले 4 हनुमान के मंदिर और मिले, घास उगा हुआ है, किसी ने कई साल से सफाई भी नहीं की है, दिया जलाना तो छोड़ो। मैंने कहा किसी ऐसे महावीर कुमार की यादगार है जिसने बाबा के यज्ञ में सफाई नहीं की कभी, आत्मजीत दीपक ही नहीं जलाया है। ये सब जहां तहां देखने में आता है। तो चिंतन करेंगे सभी, मुझे बाबा से अब भी और जन्म जन्म के लिए क्या लेना है। इतना सुख ले लें कि सुखों के दाता बन जाएं, इतने संतुष्ट हो जाएं संगम युग पर कि हर जन्म में आत्मा संतुष्ट रहे, भटकना ना पड़े। बहुतों को होता है। एक बार मेरे पास बॉम्बे की बहुत साहूकार माताएं, यंत्र रोड में आते हैं ना VIP, आई 10 थी वो, मुझे बुलवाया। अलग रहती थी कि भई हमसे आके मिल लें, नॉर्मली तो लोग मिलने आते हैं ना। उन्होंने कहा कि हमसे मिल लो। का एक ही प्रश्न आपसे पूछना है, हमारे पास बहुत धन है। माताओं को बता दूं कितना कहा उन्होंने, रोज का हमें 50,000 रुपए मिलता है खर्च करने के लिए, क्या करें हमारी समझ में नहीं आता। भाई चलो 2-4 एक हफ्ता कर लेगा, उसके बाद क्या, घर को स्टोर तो बनाएंगे नहीं। कहा पर अब ये है गहरा प्रश्न, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए, वो क्या हमें चाहिए ये आप बता दो। मैंने कहा चाहिए आपको और बताऊं मैं? मैंने कहा पता तो है मुझे आपको क्या चाहिए। मैंने उन्हें बताया आत्मा के जो अविनाशी खजाने थे, धन संपदा तो यहां की चीज है, वो खो गए हैं। जब तक वो नहीं मिलते संतोष आता नहीं। ये जो आत्मा के 7 गुण हैं, ये जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो मन बुद्धि भी एकाग्र शांत संतोष बहुत आ जाता है। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। दूसरी बात, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की प्लानिंग करना, यहीं से शुरू करो। प्लानिंग कैसी होती है, अपना 3-3 मास का लक्ष्य बनाना, मुझे 3 मास में, जैसे अभी जून पूरा होगा, मुझे अगले 3 मास में ये पुरुषार्थ करना है। उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूं, जो सहज पुरुषार्थ की विधि है। पुरुषार्थ को सबसे सहज बनाने वाला होता है स्वमान। तो मुझे ये दो या तीन स्वमान, तीन मास बहुत अच्छे अभ्यास में लाने, तीन चुन लो कोई भी, खुद चुनना है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि प्लान खुद बनाना है, लक्ष्य खुद बनाना है, खुद चिंतन करके स्वमान चुनने हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, यहां आपको अच्छा तो लगेगा पर वो सदा फॉलो नहीं किया जाएगा। खुद की उमंग बढ़े, योग का लक्ष्य बना लो, मुझे तीन मास में रोज 2 घंटा योग करना है। मैं कम से कम कह रहा हूं, 8 की बात नहीं कर रहा हूं अभी, 2 घंटे मुझे योग करना है, कुछ बैठ के कुछ कर्मों में। ये मेरी धारणा रहेगी 3 मास, जो हमने शुरू किया अपनी कमियों को जानना। मुझे 3 मास पर चिंतन नहीं करना है, उस पर वर्क करेंगे। कहीं पर चिंतन तो होगा, वो कहने से नहीं जाता, ध्यान होगा तो 3 मास में काफी कम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? फिर अगले 3 मास का बना लो, मुझे इस 3 मास में इच्छाएं कम से कम रखनी है, मुझे बहुत खुश रहना है, ये मेरे स्वमान हैं, मुझे इतना योग करना। 2.5 घंटे बढ़ा दो उसको, धीरे धीरे 2.25 बढ़ा दो, जैसे आप कर सकते हो वैसे। एक साथ नहीं करना है कि 8 घंटे योग करना है मुझे तो आज ही, और योग बैठ के नहीं ज्यादा, बैठेंगे सवेरे शाम, बाकी कर्मों में। योग युक्त जीवन तभी बनता है जब उसको कर्मों में अभ्यास किया जाए। कई संकल्प हैं उसके, आप कर्म क्षेत्र में बाबा का आह्वान कर लो, आ जाओ, आप हमारे गुड फ्रेंड हो, हमारे साथ आ जाओ, हमें मदद करो। दूसरा अभ्यास, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इस नशे में रह के कर्म करना। तीसरा अभ्यास, मैं आत्मा यहां बैठी हूं, हाथों से काम करा रही हूं। ऐसे कुछ अभ्यास सारे दिन के लिए चुन लो। 7 दिन के लिए 7 स्वमान भी चुन सकते हैं। हर स्वमान को भाई सारे दिन में मुझे 10 बार याद करना, 20 बार याद करना, खुद करना है। ये प्लानिंग बहुत आवश्यक है। बोलो कर सकेंगे? भाइयों से पूछता हूं पहले, क्यों? पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा, समस्याएं कम होंगी। पुरुषार्थ ढीला होता है तो समस्याओं का प्रकोप बढ़ जाता है। सीधा सिद्धांत है, जितनी हमारी स्थिति ऊपर उतनी समस्याएं और विघ्न नीचे, जितनी हमारी स्थिति नीचे, जीवन घिरा हुआ चीजों से। आजकल सबसे ज्यादा जीवन को सताने वाली चीजें पता क्या है? ज्यादा सोचने की आदत। जिसमें भी हो, मधुबन में आकर उसको ठीक करने की प्लानिंग करेंगे। समय के प्रभाव के कारण बिना मतलब भी कईयों की ओवरथिंकिंग हो रही है। ओवरथिंकिंग कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत ज्यादा सोचना हो रहा है बिना कारण भी। कोई समस्या नहीं, मैं हमेशा पूछता हूं ऐसों से, मोबाइल बहुत देखते हो? नहीं, जीवन में समस्याएं हैं, बच्चे सब ठीक ठाक है, बस सोच रहे हैं। काम क्या सोच रहे हैं हमें पता नहीं। ये बहुत बुरी चीज है कल्प के अंत में, समझ लें। जिसको ये, मैं इसको माया कहूं या बीमारी कहूं, जिसको ये लग गई उसका अगला पूरा कल्प बेकार हो जाएगा। हम पूरे कल्प का निर्माण कर रहे हैं, भाग्य निर्माण। इसलिए जिसको ज्यादा सोचने की हो गई हो, है ये बहुत बड़ी मानसिक बीमारी, क्योंकि यही आगे चल के डिप्रेशन में बदलता है। बहुत सारी मानसिक रोग आजकल बढ़ रहे हैं, शुरुआत यहां से होती है। मोबाइल इसका मुख्य कारण होता है, लेकिन कहीं कहीं ये बिना कारण भी हो रहा है। कारण क्या है? है तो बिना कारण, पर बिना कारण कुछ होता नहीं संसार में। क्या कारण है रमन भाई? असली कारण, क्योंकि जो कुछ जिसके साथ यहां हो रहा है कर्मों का प्रभाव। लेकिन मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, मैं देखता हूं जो कष्ट पा रहे हैं लोग, पीछे के कर्म उसके जिम्मेदार हैं। एक ही संकल्प आता है, जब मनुष्य पाप करता है तो बड़ा खुश होता है, और जब भोगना पड़ता है पापों का फल, ऐसे ऐसे केस आते हैं, बच्चों की का चेहरा देखा भी नहीं जा सकता, ऐसा खेल बिगड़ा हुआ छोटे बच्चों का। मां तो बच्चों को देख के खुश रहेगी ना, वो भी नहीं देख सकती, दुखी होती है देखते ही। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं, जिनसे योग नहीं लगता, जिनको रात को नींद नहीं आती, जो मुरली में बैठ जाए तो सोएंगे, योग उनका सब्जेक्ट नहीं है, खुशी उनके जीवन से कोसों दूर चली गई है, सुख शांति परिवार में नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। मैं सोचता हूं बचा क्या बाकी? कुछ भी नहीं बचता। मैं भी उन्हें देखता ही रह जाता हूं, क्या बताऊं इन्हें कि क्या करो, फिर कुछ ना कुछ बताते हैं। लेकिन आत्मा पाप के बोझ से इतनी दबी होती है कि वो ये भी सोच नहीं सकती कि मैं आत्मा हूं। मैं कहता हूं दिन में 10 बार सोचना केवल, कुछ और नहीं, मैं आत्मा हूं। भाई जी भूल गया मुझे तो। ये पापों का प्रभाव। इसलिए अब संगम युग पर पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है। हमारे पुण्य, और एक दूसरा शब्द भी जोड़ लो, जो हर एक बाबा के बच्चे को अपनी धारणाओं में उतार लेना है, शुभ भावनाएं, वो भी पुण्य है बहुत बड़ा। जिसने ये दो चीजें जीवन में अपना ली, जीवन सुखी हो जाएगा। भावनाएं अपनी चेक करें आप, आपके संबंध में यदि 20-25 लोग हैं, इतने तो होते हैं ना देख के मैं, क्या हमारी भावनाएं ईर्ष्या की हैं, गिराने की हैं, बदला लेने की हैं, दूसरे को परेशान करने की हैं? चेक करें। या हमारी भावनाएं हैं दूसरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ें, दूसरे आगे बढ़ें हमारा दिल खुश हो, ये भावनाएं श्रेष्ठ हैं। दादी प्रकाशमणि कहा करती थी, मेरी ये धारणा है दूसरे आगे बढ़े मेरा दिल ठरे, सिंधी भाषा, ठंडा हो, खुश हो। संसार में क्या हो रहा है? कोई आगे बढ़ रहा है तो आप तो आगे जानते ही हो, संसार में आप रहते हो। शुभ भावनाओं से अपने चित्त को भरें, चित्त शांत होगा, मन में खुशी उत्पन्न होगी, अनेक तरह के जो बुरे प्रभाव हैं समाप्त होंगे। इसको ही बाबा ने कहा है, बहुत मुरलियां चली हैं, दुआएं दो दुआएं लो, शुभ भावनाएं दुआएं दिल से। वैर भाव है दुनिया में, कोई हमें कष्ट भी देता है, कोई हमारी टांगे भी खींचता है, कोई हमें सुखी देखकर उल्टा सुलटा भी करता है, लेकिन महान हमें बनना है, हम भगवान के बच्चे हैं। मामा भी कह रही थी ना, वो ऊंचे से ऊंचा, उसके बच्चे भी तो ऊंचे से ऊंचे हैं। हम ये पक्का कर दें हम भी बहुत ऊंचे महान हैं, तो हमें तो सबको शुभ भावनाएं ही देनी है। चेंज करेंगे आज भावनाएं कलयुग के अंत तक, मन उसने बहुत बिगाड़ी हैं। सबसे ज्यादा अगर खेल बिगड़ा है तो भावनाओं का, इसलिए अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाकर ही जाएंगे। स्वीकार है? स्वीकार है? दूसरे आगे बढ़े। तीसरी अगली बात मैं कहता हूं श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। ये सब बातें पुरुषार्थ की हैं। देखो आपको एक बात याद दिला दूं, आप में से कई नए भी होंगे कई पुराने भी होंगे, भाई माताओं को जगह कम पड़ गई है, बैठा लो। बाबा ने एक बहुत गहरी बात कई मूल्यों में कही है, अभी नजदीक नजदीक में इसी साल में, साल के 6 मास तो बीत रहे पर 3-4 मास में ही कही। तीन तरह का खाता बाबा बच्चों का देख रहे हैं, करो याद, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनना, दुआएं लेना देना, संतुष्ट करना और रहना। और कहा दूसरी मुरली में, कई बच्चे सोचते हैं हमारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता, प्रारब्ध का खाता बहुत ज्यादा है, लेकिन बाबा देखते हैं जितना तुम सोचते हो उससे बहुत कम है। जब ये मुरली चली थी मैं भी सोचने लगा था, अब भगवान क्या देखता है, मनुष्य क्या देखता है। तो बाबा ने कहा अगर निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मलता नहीं है, निर्माण समझ गया ना, निरंकारी, निमित्त भाव, निरंकारिता, निर्मल वाणी, यदि ये नहीं है, बोलो कितना खाता जमा होगा? केवल 5% जमा होता है। विचार करेंगे, भगवान ने हमें गाइड किया है, मार्ग दिखाया है, कर्मों की गुह्यता बताई है। मनुष्य सोचता है मैं बहुत सेवा करता हूं, मैंने तन मन धन लगा दिया, मैंने समर्पित कर दिया, बहुत कुछ कर लिया, मैंने किया भी है, लेकिन अगर मैंपन रह गया, मैंने किया, तो खाता कटने लगा। एक व्यक्ति ने सेंटर बना के दिया यज्ञ में, और जब से बना है जिससे मिलता है वो कहता है ये सेंटर मैंने बनवाया है, मैं निमित्त बना हूं, ये बोल देता है मैं निमित्त बना हूं पर मैंने बनवाया है। 100 बार बोल चुका तो खाता कहां तक पहुंच गया होगा? मेरे पास भी आते हाँ, इधर हो जाओ भाई, तो बहने 2 लाइन बना ली, पूरे उधर हो जाओ, हाँ चलो चलो, देखो नहीं पूरे उधर हो जाओ। सुशील भाई, माताओं अभी आपका नंबर है, माते हैं भाइयों आ जाओ, नहीं वो देर से आएंगी, आप ये पहली लाइन में इधर आ जाओ, यहीं रहें। और जो भीड़ में बैठे वो भी इधर आ जाओ। तो हमें ध्यान देना है, ये तो कोई ये बातें हैं कि मैंपन न हो, सब कुछ करो बाबा को अर्पित, सबसे अच्छी स्थिति होती है सब कुछ करो प्रभु अर्पण, साथ साथ रोज करना है। लेकिन एक चीज से सबको बचना है, वो है टकराव। भाई माताओं कोई भेजता रहे, माताएं वहीं बैठती हैं, टकराव, सब देखेंगे अपने को, टकराव से बचना है, घरों में भी सेवाओं में भी। टकराव क्यों होता है? ज्यादा बातें नहीं करेंगे, 2-4 बातें ही सुना दो, उनमें से चुन लेना अपनी अपनी, मैं राइट हूं, घरों में भी संगठनों में भी मैं राइट हूं। एक हंसी कहानी सुना, कहानी क्या, घटना, कल परसों अमेरिका से एक का फोन आ रहा है, गुजराती है, ज्ञान में चले हैं। कहा मेरी पत्नी बहुत नाराज होती है, सब घूमने जाते हैं तुम मुझे कहीं नहीं ले जाता, कहीं नहीं ले जाता। मैंने कहा तो ले जाया करो ना उसको। कहा इसलिए नहीं ले जाता, अगर हम दोनों 5 मिनट भी एक साथ बैठे हैं तो लड़ाई शुरू। तो मैं ले जाके क्या करूं, मेरा सारा मजा ही बिगड़ जाएगा। टकराव, मैं राइट हूं। एक बात अब आप सुनाएंगे, सबका टकराव होता होगा घरों में, किसी का पति से, किसी का पत्नी से, बच्चों से। ईगो इसका मुख्य कारण है। अहम, जो झुकना नहीं चाहते वो टकराते हैं, जो दूसरों के विचारों को सम्मान नहीं देते वो टकराते हैं। और ये संस्कारों का टकराव मनुष्य को संगम युग का सुख नहीं लेने देगा। पूरा संगम कई युग का, तो मैं कभी एक लेख लिखा था, उन्होंने मेरा छापा नहीं था। लड़ते लड़ते ही संगम बिता दिया, कहानी रूप में लिखा था मैंने। उन्होंने कहा अरे भाई बहुतों को बुरा लगेगा, रहने दो इसको। कईयों का लड़ते लड़ते ही जीवन बीत गया है, न सुख लिया न सुख दिया, न प्यार से रहे न प्यार से रहने दिया। हालांकि ज्ञान युक्त हम होके जानते हैं कि इस समय जो कुछ हो रहा है, हमें साथ किनका मिला है इस अंतिम जन्म में, जिनका जन्म जन्म का कर्मों का खाता हमारे साथ है। कोई को अच्छे मिल गए, कोई को नहीं मिले, कोई लेने आ गए, कोई देने आ गए। तो जो कुछ है, अब माताओं को देख रहा हूं मैं, मुझे देख रही हैं जब मैंने ये बात कही, मैं चेहरे देख रहा हूं। कोई तो परेशान है, लेने आ गया पति, अब कैसे जान बचाए इससे, क्या इसी से मेरी शादी होनी थी। कि एक माता ने तो कहा क्या भगवान को यही पति मिला था शायद दुनिया में लिए। बहुत परेशान होती है, क्या अगले कल्प में भी यही मिलेगा। मुझे कहती है भाई जी आप तो समाधान करते हो ना, ऐसी विधि बताओ अगले कल्प में ना मिले। मैंने कहा विदेशों की कल्चर तो भारत में नहीं हो सकती, विदेशों में तो क्या है बदल दो, एक एक के शादियां तीन तीन चार चार बार कर ले, तो उनकी तो आदत पड़ी होती है, एक को छोड़ा दूसरे के साथ, अकाउंट अपने, कार अपनी, मकान अपने अपने नाम, इस अब दूसरी जगह चले। स्वीकार करना है, टकराव हमारे हिसाब किताब को बढ़ाएगा। सहनशीलता, सरलता जो मूल्य में चल रहा आजकल, सहनशील होंगे, झुक कर चलेंगे, टकराएंगे नहीं, खाता चुक तो होगा। जिसके जैसे भी साथी मिले हैं, बात पति पत्नी की नहीं, बच्चे भी या और कोई रिलेटिव भी, सहज भाव से जीवन जीना है, कुछ स्वीकार करना है। और बहुत अच्छी चीज है, अगर हम स्वमान में रहेंगे तो दूसरे भी हमारी बात स्वीकार करेंगे। बाबा की मुरली में सभी ने बहुत सुना है, बहुत दिन से नहीं आया है, मैं आत्मा हूं दूसरा भी आत्मा है। इस स्थिति में स्थित होकर यदि ज्ञान देंगे तो प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। बच्चे आपके घर में ये आत्माएं हैं, ये हमारे बच्चे तो हैं पर ये भगवान के बच्चे हैं, मैं भी आत्मा हूं। और स्वमान जोड़ दें इसके साथ, जैसे मैं महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, तो आपके बच्चे, आपके सब परिवार के लोग आपकी बात सुनेंगे, टकराव खत्म हो जाएगा। लेकिन टकराव कहाँ होता है, जहां मनुष्य सोचता है दूसरा व्यक्ति मेरी ही सुने, जैसे मैं कहूं वैसे ही हो, इसे टकराव होता है। अपने को चेंज करेंगे और इस बहुत बुरी बीमारी से बचेंगे। अपने हाथ में, हाथ में मैं हंसी में सुनाया करता हूँ क्लास में, कईयों की कहानी होती है, बहन जी आती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ भाई जी बहुत, मैंने कहा कोई अच्छा शब्द बोल दो, बहुत परेशान हूँ। क्यों? पति सुनता नहीं है। मैं कहा बस इतनी छोटी सी बात, मैंने कहा जो मैं कहूँ वो करोगे? वो सोचती थी कोई बहुत अच्छी बात मिलने जा रही है। मैंने कहा तो ऐसा करो 15 दिन कुछ भी सुनाओ नहीं, देख लें जो माताएं ऐसा सोचती हैं कर सकती हैं, 15 दिन कुछ न सुनाओ, फ्री कर दो, क्या फायदा होगा? वो आपकी सुनने लगेगा, करके देखना। लेकिन अधिकतर माताएं कहती हैं 15 दिन इतना ज्यादा, चुप रहा हूं। कहा नहीं, अंतर्मुखी रह के योग लगाओ। तो टकराव हमें समाप्त करने हैं, क्योंकि संगम युग का समय ईश्वरीय प्राप्तियों का है। ये छोटी बातों में बिता दिया तो अंत में क्या होगा? पश्चाताप। भरपूर हों हम, बहुत लोग ज्ञान से विमुख हुए टकराव के कारण, बनी नहीं आपस में। तो सोचा यहां सुख शांति के लिए आए थे, क्या करेंगे यहां रह के? तो टकराव ने प्रभु मिलन, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ योग सबको फीका कर दिया, भगवान के मिलन को भी फीका रूखा कर दिया, छोड़ के चल दिए। इसलिए एक बहुत सुंदर लक्ष्य बना लें, चाहे मुझे झुकना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन टकराव में नहीं आएंगे। टकराव से मन की शक्तियां नष्ट होती हैं और समस्याएं बढ़ेंगी। आज ये फॉर्मूला आप सभी बहुत पक्का कर ले जीवन में, जितनी संकल्प शक्ति नष्ट होगी, जीवन में परिस्थितियां, शरीर में रोग, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जाएगी, रोग भी बढ़ेंगे। आजकल तो अनेक रोगों का कारण ये निगेटिव थिंकिंग, टेंशन, ज्यादा सोचना, परेशान रहना, खुश न रहना, ये हो गया है। तो मन को तैयार करो आज, टकराव नहीं। बोलो स्वीकार है भाइयों को? क्यों टकराते? ईगो, मैं घर का बड़ा, कमाता तो मैं हूं। आजकल ये भी टकराव हो रहा, भाई कमा रहा तो बहन भी कमा रही है, कौन झुके? ये भी टकराव का बहुत बड़ा कारण बन गया है, डिवोर्स का कारण बन गया है ये। लेकिन जो झुके, अब हम अध्यात्म के रास्ते पर हैं, जो झुके वही महान। बाबा साकार में कहते थे एक ही बार आई वो बात, बस एक ही बार, जितने साल भगवान इस धरा पर रहे, ज्ञान देते रहे, वो एक ही बार आई। बच्चे तुम कहते थे प्रभु मैं गुलाम तेरा, अब मैं कहता हूं बच्चों मैं गुलाम तेरा। बहुत निरंकारी, इसलिए अपने अभिमान को कैसे छोड़ेंगे? स्वमान के अभ्यास से जान लेना, अवेयरनेस हो जाना कि मेरे पास भाई ये ईगो है, वो पहली सीढ़ी। लेकिन ईगो अभिमान जाएगा स्वमान से। आपकी समस्याओं का ये बहुत सुंदर और सरल हल है। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। देखो सबको समस्या होती है, बहनों को भी भाइयों को भी। जब ज्ञान में चले तो कई लोग विरोधी, अपने पराए जो सम्मान देते थे वो गाली देने लगे। स्वमान बढ़ाओ, सम्मान पीछे पीछे आएगा। इसलिए स्वमान की कुछ बातें लिख लो अपने पास, 8-10 स्वमान लिख लो। एक बात थी, दूसरा था स्वमान बढ़ेगा अभिमान आपे ही घटेगा। लेकिन स्वमान के अभ्यास की विधि है, जो स्वमान बाबा ने हमें दिए उसे स्वीकार करना। मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूं जो सबसे सरल उदाहरण है। बाबा ने हमें स्वमान दिया, देखो इंग्लिश में बाबा दो शब्द बोले, तुम हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माएं हो, महान और परम पवित्र। तुम महान हो, अब बाबा कहते हैं मेरे महान बच्चे बैठे हैं, हमने सुना मैं महान हूं, अंदर से क्या आवाज आई? नहीं, तुम महान नहीं हो। किसी को अपना पूरा जीवन दिखाई देने लगा, रहे इतने पाप किए तुमने, महान कहां से हुए? तुम्हारा तो योगी नहीं लगता, महान कहां से हुए? तुम तो लड़ाई कर लेते हो, महान कहां हुए? कई बातें हमें उस स्वमान को रिजेक्ट करा देती हैं, तुम नहीं हो। अब इसको ठीक करें, अगर हम स्वीकार करेंगे, कौन कह रहा है तुम महान हो? कौन कह रहा है? स्वयं भगवान। तो सत्य कहा होगा ना, आज था ना गॉड इज ट्रुथ, जो सत्य ज्ञान देता है। तो हम स्वीकार करें, ठीक है हमारा पिछला जीवन अच्छा नहीं रहा, हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं, पर मान तो हम हैं, जिसे भगवान मिल गया हो, जिसे रोज अमृत पीने को मिलता हो, आंख खुलते ही भगवान मिलता हो, जिसे संपूर्ण ज्ञान मिल गया हो, वो महान है। जो दो युग तक देवता रहे वो महान नहीं है क्या? अब ज्ञान के बारे में सोचो, ज्ञान की वैल्यू बहुतों को पता नहीं होता, सोचते हैं रोज बाबा वही तो कहता है, घर में ही सुन लेते हैं, आजकल तो फोन पे आती है, नहाते धोते किचन में रहते मुरली सुन रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन क्लास में आके सुनना, एनर्जी मिलेगी, एक एक संकल्प एनर्जी देगा। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। द्वापर युग से ऋषि मुनि विद्वान आचार्य सत्य ज्ञान को खोजते रहे, आज भी था मुरली में, ये भी नहीं पता चला मैं कौन हूं, ये किसी को पता नहीं चला, न किसी शास्त्र में लिखा हुआ है आत्मा कहां से आई है, इसलिए भगवान का धाम पता न होने से सर्वव्यापी मान लिया, खेल पूरा बिगाड़ दिया। कितनी उलझन थी हमारे भारतीय दर्शनों में भी, बाबा ने एक एक सेकंड में एक एक बात कह के पूरा कर दिया, और गुह्य बात कह दी 3-4 दिन पहले भी आया, परम धाम में हर धर्म की आत्मा का सेक्शन भी अलग अलग है। ये इतनी गुह्य बात है, इसको कोई समझ ही नहीं सकता। विदेशी जब आते थे हमारे पास, तो मेरे से एक प्रश्न भी कईयों ने पूछा कि वहां जो अलग अलग सेक्शन है, दीवार लगी हुई है क्या? परम धाम में दीवार होती है क्या? मैंने कहा, फिर कहा एक सेक्शन की आत्मा कूद के दूसरे में नहीं जा सकती, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे बहुत। मैं कहा जा ही नहीं सकती, उनके संस्कार उनके वाइब्रेशन उनको वहां आने ही नहीं देंगे, और न उनको इच्छा होगी। हर आत्मा अपने धर्म में संतुष्ट है वहां। तो बहुत गहरा ज्ञान दे दिया, और सबसे गहरी बात, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ, वो अविनाशी है। देखो बाबा ने तो एक लाइन में बड़ी बात कह दी, अगर यही बात कहीं शास्त्रों में लिखी होती तो लोग सोचते क्या है, शास्त्रार्थ होते रहते, लड़ाई होती रहती, इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है। एक छोटी सी बात, लोग आपसे प्रश्न पूछते होंगे शास्त्र आदि के, आजकल तो कम पूछते हैं, आजकल शास्त्र पढ़ता ही कौन है दुनिया में, जब हम लोग ज्ञान में आए तो बहुत बहस करते थे। एक होता है शब्दार्थ, दूसरा होता है भावार्थ, जानते हैं ना हिंदी वाले बैठे हैं। शास्त्रों में लोग शब्दों का अर्थ करते रहे, भावों को नहीं समझा, भावों का अर्थ क्या है, इसलिए गड़बड़ बहुत हुई। एक और बड़ी चीज आप सुन लें, सबको काम आएगा समझाने में कहीं ना कहीं। शास्त्र या वेद, दर्शन, पुराण, उपनिषद जिन ऋषियों ने लिखे थे उनका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा था, उनकी मनोस्थिति बहुत ऊंची थी, पवित्रता थी। जो पढ़ रहे हैं उनका आध्यात्मिक स्तर बहुत छोटा है। अगर हमें उन चीजों के रहस्यों को समझना है तो आध्यात्मिक स्तर को उन जैसा ही बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मुरली की गुह्यता को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक मुरली सुनते या टोटल जीवन में हमारा स्थिति का लेवल बहुत ऊंचा न हो। ये सबको ध्यान रखना। तो ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज हमें मिली है, इसको वैल्यू नहीं। भगवान ने पढ़ाया तो छोटा मोटी पढ़ाई थोड़ा ही होगी, जिसे स्वर्ग की रजाई मिलती है। लेकिन एग्जाम भी तो बड़ा होगा या नहीं, या छोटे से में काम चल जाएगा? रजाई मिलनी है, एग्जाम भी बड़े होंगे, रोज के टेस्ट पेपर भी बड़े होंगे, रोज नंबर मिलेंगे हमें। तो न संस्कारों का टकराव, वो परिवारों में भी अभी प्लान बना लो, यहीं थोड़ा झुक के चलेंगे, दूसरे की बात भी सुनेंगे। कई लोगों की नेचर होती है सुनना ही नहीं है, केवल सुनाना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मनुष्य की, इससे दूरियां बढ़ती हैं परिवारों में। सुनाना भी होता है लेकिन सुनने की आदत अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के विचारों को सम्मान देने का संस्कार होना चाहिए। अपने संस्कारों को सॉफ्ट इस तरह बनाना है कि मैं बुद्धिमान हूं तो दूसरा भी तो कुछ होगा या नहीं, या उसके पास बुद्धि है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छी स्थिति बनानी है मधुबन की इस यात्रा का, संपूर्ण लाभ आपको उठाना है, अपने को भी देख लेना है। दोनों बातें देखनी है, कोई कमजोरी और महानता। महानता माना स्वमान, बहुत बड़े बड़े स्वमान दिए। तुम विजयी रतन हो, मैं एक पर ही बोल रहा हूं, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। सुना है ना सबने, स्वीकार करो। इसका अर्थ है कल्प कल्प हम सबने माया पर विजय प्राप्त की है, और आगे अर्थ है माया को जीतने की शक्ति हमारे अंदर है। किसने दी है? बाबा ने सिर पर हाथ रखकर हमें शक्तियां दे दी हैं। तो कल्प कल्प जीता है, अब भी जीत हमारी ही होगी। ये चिंतन करें स्वमान का, तो माया को जीतने की शक्ति एक्टिव हो जाएगी। क्रोध जिसको आता हो, मैं दो टाइम पूरा होगा दो बातें सुना देता हूं, काम को जीतना और क्रोध को जीतना। गीता में तीसरे अध्याय में है, मुझे बहुत प्रिय लगती थी ये बात। हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने काम क्रोध के वेग को रोक लिया वही सच्चा योगी है। दोनों की विधि आपके सामने। क्रोध को जीतने के लिए लिख लेंगे जो लिख रहे हैं, टीचर बहनों को सबको सिखाना है मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। आंख खुलते ही 21 बार लिख दो, 5 मिनट लगेंगे ज्यादा। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। लिख ना पाए घरों में, लाइट ना जला पाते हो आप सवेरे, ऐसे ही बैठ के इसी गति से फीलिंग के साथ मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत। थोड़ा क्रोध होगा तो 21 दिन में खत्म, ज्यादा हो 3 मास लिख देना, और लक्ष्य रखना कि क्रोध को जीतना है, क्योंकि ये अग्नि है जो आत्मा को जलाती है। आत्मा के बारे में कहा ना, इसको अग्नि नहीं जला सकती, पर क्रोध की अग्नि आत्मा को जलाती है। काम को जीतना है, मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र आत्मा हूं, मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। 21 बार इसको ज्यादा समय चलाना है, 1 साल, क्योंकि काम को जीतना सबसे बड़ी विजय है। बिल्कुल मन को स्वच्छ कर लेना बहुत बड़ी एक साधना की जरूरत होती है। ऐसे ही पानी भी चार्ज करके पिएंगे क्रोध को जीतने के लिए। मैं आत्मा शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, 7 बार। ये पानी में ऐसी ताकत है कि वो हमारे संकल्पों की तरंगों को तुरंत ग्रहण कर लेता है। सबसे ज्यादा पानी सेंसिटिव है। पिएंगे चित्त शांत होगा। काम को जीतने के लिए मैं आत्मा परम पवित्र हूं, 7 बार। ऐसा पानी 2-4-5 बार पिए रोज, तो काम क्रोध को जीतना सरल हो जाएगा। तो आप सब भट्टी में आए हैं, बहुत अच्छा प्लान बनाकर जाना, और सुखी होकर तो जाएंगे ही। आप सुखी हो गए हैं दिख रहा है, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी उमंग, संगम को सफल करना है। हमारा संगम ऐसे ही न गुजर जाए, इस संकल्प के साथ जीवन व्यतीत करना। ओम शांति।
भर ली